ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मिन् श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतः तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय मां शरणं।
हिंदी में ही बोलो। एनीवन कैन ट्रांसलेट इन इंग्लिश बट आफ्टर सो मेनी डेज आई एम गोइंग टू स्पीक इन। आज एकादशी का दिन है। आज हम लोग एकादशी का व्रत किए हैं। भारत में अधिकांश लोग एकादशी का व्रत करते हैं, चाहे और कोई व्रत करे चाहे ना करे, किंतु एकादशी का व्रत चाहे वो वैष्णव हो, चाहे अद्वैतवादी हो, चाहे रामानुजी हो, मध्वाचार्य का हो, कोई किसी संप्रदाय में नहीं रहे, सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी लोग इस व्रत को करते हैं। कोई भले ही कोई व्रत न करे, किंतु आज की ये जो एकादशी है जिसको निर्जला एकादशी कहते हैं, एक एकादशी करने से सब एकादशी भी हो जाएगी, सब व्रत भी करने हो जाएंगे। सोम मंगल कितने बहुत से लोग करते हैं, सारे एक एकादशी के करने में ही हो जाते हैं। क्यों ऐसा है? और एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए? उससे कुछ लाभ है या हानि है? भूख लगती है, आदमी दुर्बल हो जाता है, आदमी काम नहीं कर सकता, लोगों की बहुत सी ऐसी धारणाएं हैं, किंतु ये गलत धारणा है। एकादशी नाम ही क्यों पड़ा? जो जिस दिन को पढ़ते हैं वही नाम रख देते, सोम मंगल बुधवार। हमारे लिए इस जीवन में शरीर में 11 अंग होते हैं जिसके सहारे हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी सोचते हैं। मान ले के मन में सोचा, किंतु यदि काम शरीर से नहीं किया, हाथ से नहीं किया, हमको जाना है यहाँ से दो घर उधर में या बैंक में जाना है, तो यहाँ से उतरना होगा पैर से, तो पैर के बिना कोई काम कर सकते हैं नहीं। अरे रसोई बनाना है, रसोई हो गई है, कहीं होटल में गए, खाना है तो हाथ से उठाना तो होगा, हाथ से नहीं उठाएंगे तो कैसे? हाथ नहीं उठाएगा तो क्या होगा? मुख से हाथ से उठा दिया, चिबाना तो मुख को पड़ेगा ना, जीवा तो काम करेगी। अच्छा, आदमी हाथ पैर से चलता है या मन से चलता है? पैर से चलता है या मन से चलता है? कैसे? पैर से ना। मन यदि नहीं, कोई पागल हो आदमी तो गिर जाएगा। पैर रहे और मन ना रहे तो क्या होगा? कुछ देर चलने के बाद में वो गड्ढा नहीं देखेगा, कुछ नहीं देखेगा, गिर जाएगा, मरेगा। इसलिए सब काम मन से होता है, और मन नहीं रहेगा तो पैर काम नहीं करेगा, आंख नहीं काम करेगी। एक आदमी, कोई एक महिला है या कोई पुरुष है, उसका कोई आदमी मर गया, बहुत चिंतित है, बैठा हुआ है या बैठी हुई है, चिंता कर रही है, और यहाँ से एक बाजा बजता हुआ चला गया शादी होने के लिए, तो कोई पूछता है जैसे तुमने देखा अभी बहुत से लोग गए बाजा बजाते हो, तो नहीं हमने तो नहीं सुना, मन कहाँ था? इसलिए वहां पर कान रहने पर भी काम नहीं कर सका, आंख थी आंख से नहीं देख सकी, इसलिए सबका राजा मन है। और इसके बाद में पांच उसके मुख्य सहायक हैं जिससे वो ज्ञान लेता है और सुख दुख की अनुभूति करता है, वो क्या है? चक्षु, आंखें, चक्षु, कर्ण, ये दोनों काम, नासिका, जीवा, यदि न रहे जीवा और रसास्वादन नहीं होगा, उसे रस नहीं आएगा, हजम नहीं होगा, और उसे ये कड़वा है कैसा है ये सब जीवा से मालूम होता है। तो ये पांच सेंस हैं जिसे हम सर्दी गर्मी अच्छा बुरा कोमल कड़ा ये सब गर्म है कैसा है ये सब चीजें इसी से मालूम होता है, इसी से हम लोग ज्ञान अर्जन करते हैं। ये चीजें न रहे हमारा हाथ, ये त्वचा न रहे तो ये गर्म चीज है कि ठंडी चीज है, मन करेगा? मन तो कुछ कर नहीं सकता, मन उसके सहारे ज्ञान ले करके तब फिर उस पर विचार करके अच्छा है बुरा इत्यादि सब करता है, किंतु इसकी भी जरूरत है। और पांच कर्म इंद्रिय है जिसे कर्म करते हैं हम, हाथ है, पैर है, जीवा है, और जिससे पैखाना होता है और पेशाब होता है। यदि पेशाब का रास्ता बंद हो जाए तो अभी अस्पताल में दौड़ना पड़ेगा, एक मिनट भी बचना भारी मुश्किल हो जाएगा, घर को सिर पर ले लेंगे। और यदि पैखाना बंद हो गया तो अब मरे तब मरे। ये समस्त ये दस इंद्रिय और मन मिलाकर के ये शरीर का काम सब चलता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इस दस इंद्रियों को संयम नहीं करने से गड़बड़ हो जाएगा, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ मरोगे, घी अच्छा लग रहा है उसमें बुरा दे दो मीठा हो जाएगा ना, बुरा बुरा जानते हैं, जानती है सुबह बहुत, एक किलो घी में आधा किलो मिला दिया बुरा और पूरा खा गए तो क्या होगा? घी खाने से कपड़े गंदे हो जाएंगे, लूज मोशन ऐसा होगा जिसे फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा ना, पिचकारी चलेगी बचना संभव असंभव हो जाएगा, इसी को कहते हैं कॉलरा। इसी तरह से समस्त अपने इंद्रियों पर काबू नहीं करेंगे हम, कंट्रोल नहीं करेंगे तो इंद्रियां गड़बड़ कर देंगी, अधिक ले लेंगी, इसीलिए इन सबको संयम करने का लिए ही एकादशी का व्रत, दसों इंद्रियों एकादशी इंद्रियों पर। और विशेष करके आज के दिन एकादशी माने क्या, आज तिथि भी है चंद्र के समय से कुछ ऐसी गणनाएं होती हैं जिससे कि हमारे वर्ष इत्यादि की गिनती होती है, उससे ऋतु इत्यादि हम सब जानते हैं, शरीर पर उसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आज चंद्र में एकादश कलाएं होंगी, दो होता है वर्ष में, एक तो क्षीण होते 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 एकादश की स्थिति में आ जाएगी, अथवा बढ़ते बढ़ते एक एक कला बढ़ते 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 चंद्र 11/15 कलाएं होती है 16, तो 16/11/16 माने 11वां भाग चंद्र का दिखेगा ना? किसी भी प्रकार से तब एकादशी होती है। इसका प्रभाव क्या होता है, उस दिन समुद्र में ज्वार भाटा बहुत अधिक ऊंचा उठता है, जरूर उठेगा ही साधारण दिनों की अपेक्षा, यदि साधारण दिन में 1 फुट समुद्र की वो ज्वार भाटा आते हैं तो उस दिन पुरी में हम जाते हैं देखते 15 फुट तक, 10-15 फुट ऊंची उठ जाती है चंद्र के आकर्षण से, जहां पानी होगा वहां पर चंद्र आकर्षण आज तिथि में करेगा, तो हमारे शरीर में भी पानी है, भोजन जो करते हैं उससे पानी बनता है, फिर पानी बन करके उसका जो स्थूल अंश होता है पैखाने के रास्ते से और गंदा पानी पेशाब के रास्ते से निकल गया और उससे बाकी का बन गया रक्त, रक्त से बना मांस मेद मज्जा, उससे शुक्र और शुक्र से बुद्धि बनती है, मन बनता है। प्याज लहसुन खाया तो आपका मन भी तामसिक प्याज लहसुन जैसा होगा, बकरी और बकरे का मांस खाया तो उस मांस के समान होगा, आदमी बड़ा कामुक होगा, बदमाश होगा, लोगों को काटेगा पीटेगा। इसलिए आज के दिन चंद्र हमारे शरीर में जो पानी होता है उसको खींचता है। यदि आपने अन्न खाया और उस अन्न जो होता है जैसे गेहूं का कोई बना हुआ चीज, चावल का बना हुआ, ये ब्लॉटिंग पेपर के समान होता है, रुई होती है ना, पत्थर पर पानी छोड़ दो तो पानी जल्दी से सूख जाएगा और रुई के ऊपर में पानी छोड़ दो तो वो दिन भर नहीं सूखेगी, सूखेगी। इसलिए अन्न जो हम उस दिन खाते हैं उसमें पानी ऐसा होता है जिसको चंद्र खींच करके उसके रोग को बढ़ा देता है। इसलिए आदमी अधिकतर एकादशी से अमावस्या, एकादशी से पूर्णिमा के अंदर में मरते हैं, उनका रोग बढ़ता है और भी रात के समय में बढ़ेगा जिस समय कि चंद्र उदित होता है। इसलिए हम लोगों के यहाँ बतलाया गया कि एकादशी के दिन में यदि तुम लोग अन्न नहीं खाएगा तो तुम लोग सुखी शांति रहेगा, शरीर में रोग कम होंगे, आदमी 100 वर्ष तक जिएगा और सुख से जिएगा। और जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते चंद्र उनका वो सब डिस्टर्ब करके और सब चौपट कर देता है, शरीर स्वस्थ अस्वस्थ हो जाता है, उसमें तरह तरह के रोग होते हैं। उसमें दम्बा है, दम्बा जानते हैं ना, श्वास का उदरी रोग, भगंदर रोग, यहाँ तक कि टीबी कैंसर इत्यादि, यदि थोड़ा है तो उसको बढ़ा देगा। इसलिए उस दिन एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाए, हो सके तो निर्जला, जैसे कि चंद्र का प्रभाव उस पर नहीं पड़े बुरा, और यदि नहीं होता है तो ऐसे चीज को खाओ जो सहजी में वो पानी निकल जाए। वो क्या चीज है, फल है, दूध है, फल फ्रूट से बनी हुई चीजें हैं, दूध से शरबत या और जो चीजें हैं ये सब लिया जाए तो उससे क्या होगा, सहजी में पानी निकल जाएगा, और नहीं तो ब्लॉटिंग पेपर या रुई की भांति उसको प्रिजर्व करके रखेगा और रोग को बढ़ाएगा ही। हमने अस्पतालों का बहुत सा देखा है, जो आदमी मरते हैं अधिकांश एकादशी में उसी रात को, यदि रात को बच गया तो दिन में किसी प्रकार रहेंगे, नहीं तो फिर रात आने पर बढ़ पूर्णिमा तक डर रहता है। इसलिए इन चीजों को रोकने के लिए स्थूल रूप से भौतिक रूप से इसकी आवश्यकता है, और पारमार्थिक रूप से क्या है, पारमार्थिक रूप से इन एकादश इंद्रियों को महीने में दो बार कुछ विश्राम देना चाहिए। आप लोग काम करते हैं ऑफिस में, इधर उधर में काम करते हैं, तो गवर्नमेंट छुट्टी आपको ऐसे ही देती है, उसका कितना पैसा मारा जाता है, एक दिन की छुट्टी देने में लाखों लोगों को कितने पैसे उसके नुकसान होते हैं, किंतु नहीं, वो इसलिए जानबूझ करके देती है गवर्नमेंट छुट्टियां, ये जो परिश्रम करके क्लांत आदमी हो जाता है तो वो थोड़ा सा विश्राम कर लेगा, उसका मन जरा ठीक हो जाएगा, दूसरे दिन पूरे डबल रूप से काम करेगा, वो दुगना उसे वसूल कर लेगा, और सब समय काम करता रहे तो कुछ दिन के बाद वो काम नहीं करेगा, बीमार हो जाएगा। उसी तरह से अपने अंदर में, शरीर के अंदर में बहुत से कीड़े हैं जो हजम करते हैं, उनके पुष्टि रहने से हम लोग पुष्ट रह सकते हैं, उनके बीमार हो जाने से हम लोग भी बीमार हो जाएंगे, इसलिए उनको एक दिन विश्राम अंततः 15 दिन में एक दिन देने की जरूरत है। फूल यदि करो दूसरे दिन तक तुम्हारी एनर्जी शक्ति पूरी होगी, अच्छी रहेगी, और यदि इनको विश्राम नहीं दिया तो 100 वर्ष की आयु आपकी 50 वर्ष की आयु रह जाएगी, वो भी स्वस्थ नहीं रहेगी। किंतु ये सब हमने गौण बतलाए, मूल चीज क्या है, भगवान ने देखा कि हमको छोड़कर के जीव भुला हुआ भटका हुआ संसार में, इस शरीर को ही सर्वस्व मान रखा है। यह शरीर बड़ा सुंदर है तो बहुत सुंदर दिखता है, किंतु कभी कभी हम लोग धोखा खा जाते हैं, गुणों की परख नहीं कर पाते, शरीर में चलते हैं, शरीर वो धोखा दे, सौंदर्य में वशीभूत होकर के मरते हैं हम। तो यदि आत्मा सुंदर है, स्वच्छ है, पवित्र है, उसके गुण है, तो आदमी श्रेष्ठ है। हम लोग गांधी जी को बहुत मानते हैं। गांधी जी कैसे खूब सुंदर थे, लठिया लिए हुए बूढ़े से चलते थे, दुबले पतले, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, महात्मा गांधी कहलाते हैं। उनसे जगत में लाखों कोटि बड़े बड़े सुंदर लोग। इसलिए जिसकी आत्मा सुंदर है वो सुंदर है, जिसके गुण सुंदर हैं वो सुंदर है, है ना? जो खूब सुंदर है और वो सुंदरता के वजह से लोगों के समाज में बन करके अच्छा, और उनका सब कुछ चोरी कर लेता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, बदमाशी करता है, डकैती करता है, तो वो किस काम का है? तो हमारे अंदर में हम भगवान को भूल करके अभी जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। कब से पड़े हैं इसका कोई था नहीं, अनंत कालों से। और कितने बार हमारा ये पहला मनुष्य जन्म नहीं है, जब से जगत की सृष्टि हुई तब से हमारा ये जन्म, कभी हुआ तो सुकर कुकर, कभी मनुष्य कभी स्त्री कभी पुरुष, पुरुष कभी स्त्री कभी पुरुष, कभी कच्छप कभी मांस कभी मछली कभी कुछ, इस तरह से जन्म होते हैं। तो आज इस स्थिति में हम पहुंचे हैं। हो सकता है कि 10 बार हम 50 बार लाखों बार मनुष्य हुए हों, कभी देवता भी हुए हों, कभी हम किसी देश के राष्ट्रपति बने हों, बड़े धनी हो, बिरला और टाटा और यहाँ पर कौन कंपनी मोटर वाली फोर्ड कंपनी से हम धनी हों, ऐसा हो सकता है। कभी राजकुमारी हुए हों, कभी एलिजाबेथ भी हुए हों हम, कभी डायना, अभी अभी हाल में कोई डायना है वो भी हुए हों, कितने रंग और कितने हम लोगों ने किए हों, किंतु जन्म मरण का चक्कर से, ये दुखों से, बुढ़ापा से हम नहीं छूटे। इसको छुड़ाने के लिए भगवान ने कहा है, अच्छा भाई मैं एकादशी का रूप धारण करता हूं, और यदि कोई भूल भटके से भी, जान में अनजान में भी, यदि एकादशी के दिन अपनी बहू से अपनी स्त्री से झगड़ा करके भी यदि नहीं खाया उस दिन, होता है ना, आदमी किस लिए नहीं खाता, कभी कभी झगड़ा हो गया है बहू में और पति और पत्नी में, बीबी और मियां में हो गया झगड़ा, तो झगड़ा हो गया कहे अब मैं नहीं खाऊंगी। यदि ये भूल से भी यदि किसी ने उस दिन नहीं खाया, इसका महान फल होता है, रोगों से भी बचता है, शरीर को विश्राम भी मिल जाता है, और भगवान ही एकादशी होकर के आए उस दिन, उस दिन कि उन्होंने एक दे रखा है कॉन्सेशन, बहुत बड़ा भारी कॉन्सेशन, लोग तो हमको याद करते नहीं। यदि उस दिन में बिना जाने सुने हुए भी यदि भोजन नहीं किया, चावल गेहूं रोटी मकई इत्यादि का ये सब भोजन नहीं किया, और रात में यदि नींद नहीं आई झगड़े के कारण या किसी भी कारण से, तो और भी अच्छा हो गया, रात्रि का जागरण हो गया ना? और हुआ क्या, उसे भगवान की स्पेशल मर्सी उस पर बरसती है, स्पेशल, और उसके द्वारा भगवान को जानने का उसको मौका हो जाता है। संतों का संग भगवान मिला देते हैं, और धीरे 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 देव आत्मा को रियलाइज करके भगवान को भी जान करके भगवान के उस धाम में पहुंचता है जहां से फिर लौटना नहीं होता। जदगत्वा न निवर्तन्ते तद धाम पर, उस कृष्ण के गोलोक बैकुंठ से भी ऊपर ब्रज धाम को प्राप्त करता है। यहाँ पर भी ब्रह्मा का जाना बड़ा भारी मुश्किल है। शंकर जी गए हैं तो कैसे गए, गोपीश्वर महादेव बन करके गए, ऐसे धाम में अनायासी एकादशी भक्ति की जननी है। जैसे हमारी मैया हमारी जननी है, अपने कोख में धारण करती है, उसी प्रकार से ये एकादशी भक्ति देवी को जन्म देने वाली है। सहज है, किंतु एक कृष्ण ने कॉन्सेशन दिया है एक दिन के लिए 15 दिन में, इसको आप लोग भूलेंगे मत। भगवान के चरणों में प्रेम होता है, और ऐसी कोई व्यवस्था करते हैं भगवान, जरूर अपने भक्तों को किसी न किसी माध्यम से जरूर मिला देंगे, यदि एक बार भी एकादशी कर लिया, और एकादशी का फल इतना अनंत है जिसको भी भगवान भी वर्णन करने में समर्थ। मथुरा की एक सत्य घटना में, प्रत्यक्ष घटना मैंने अनुभव की। एक गाय थी बड़ी बीमार, उसका पेट फूल गया, रास्ते में पड़ी हुई, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। गाय बड़ी सुंदर देखने में, किंतु अब मर रही, छटपट छटपट कर रही है। आदमी देख रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते। उस अवस्था में एक मथुरा की जो रोज हमसे प्रवचन सुनने आती, उसने कहा, महाराज जी बड़ी दया आती है, एक गाय बड़ी सुंदर पड़ी हुई है, पेट फूला हुआ है, और वो बोल भी नहीं पाती है और आंख से आंसू गिरते हैं। मैंने कहा, जी जाओ बेटी, जा करके गैया के कान में कहना कि मैंने बहुत सी शुद्ध एकादशी की है, निर्जला, उसका फल आपको मैं देती हूँ गैया माता, एक एकादशी का केवल फल मैं आपको अर्पण करती हूँ, और उसके बाद में देखना जी क्या होता है। तो गई और गैया के कान में बैठ करके उसको गंगा जल या यमुना जल वहाँ रहता है, ले आ करके उनको तुलसी दे दिया उसके मुख में, और कहा, जी गैया गो माता, आपके कान में मैं आपको अपनी एकादशी निर्जला हमने बहुत से किए हैं, उसका एक एकादशी का फल आपको देती। कहने के साथ में गैया ने एकदम उसको होश हो गया, उसके तरफ में देखा और देख करके एक मिनट के अंदर में श्वास छोड़ दिया, और उसी दिन भी एकादशी भी थी, सहज रूप में चली गई। ये तो हमने लौकिक कहा, अब चले हैं हम परमार्थ में। एक राजा थे, उनका नाम था अम्बरीश महाराज, भागवत में पढ़े हैं ना अम्बरीश महाराज की कथा। वो भगवान के भक्त थे, एकादशी का निर्जला उपवास करते थे। कैसे करते थे? एकादशी के पहले दिन एक बार खाते थे सवेरे, फिर शाम को रात में नहीं, और एकादशी के दिन एकदम पानी भी नहीं लेते। दूसरे दिन सवेरे सूर्य के उठने पर ठाकुर जी की पूजा कर ठाकुर जी का प्रसाद कुछ वो ग्रहण करते थे, रात में सोते नहीं थे, नाम करते थे, हरे कृष्ण जपते रहते थे, मथुरा में रहते थे। एक समय में दुर्वासा ऋषि वहां पर पहुंचे। दुर्वासा जी बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, योगी हैं। वो यदि किसी को कह दें जे तुम मर जा, मर जाएगा, तू पेड़ हो जा, पेड़ हो जाएगा, तेरे घर में आग लग जाए तो आग लग जाएगी, ऐसे ऐसे कर देंगे तो सिर से आपकी ज्वाला निकलने, लपटे निकलने लग जाएगी, जिसको जो कहते हैं वही हो जाता है। तो वो आए उनको देख करके। उस दिन द्वादशी का पारण था, पारण किसको कहते हैं, एकादशी को करने के बाद में व्रत, दूसरे दिन सूर्योदय के बाद में ठाकुर जी को कुछ दे करके, कुछ जरूर अन्न जातीय कुछ लेना है, नहीं तो व्रत नष्ट हो जाता है। उस दिन एक घड़ी केवल की आध घड़ी द्वादशी थी, इसके बाद में उसी के अंदर में पारण करना है, कुछ खा लेना है ठाकुर जी को भोग दे करके। वो तैयारी में थे, अब मुश्किल से 20-25 मिनट का समय रह गया था। यदि इसके अंदर में कुछ नहीं खाते हैं ठाकुर जी का प्रसाद तो व्रत नष्ट हो जाएगा, उनको भगवान की कृपा से वंचित रहना पड़ेगा, इसलिए वो तैयारी में थे। इधर में दुर्वासा जी आ गए, दुर्वासा जी से को देख करके बड़े प्रसन्न हुए कि आज तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले और सिद्ध महात्मा जी आ गए, आज हम पहले आपको खिला करके तब द्वादशी का हम पारण करेंगे, ये ठीक है, तो हमको खिलाएगा तो हम तो आपको खिलाएंगे, आप हमारे घर में प्रसाद पाइए। उन्होंने कहा, जैसे बेटा मैंने अभी तो स्नान नहीं किया, आज काम में ऐसे लग गया स्नान नहीं किया, मैं अभी यमुना पासी हैं, यमुना में स्नान करके आ रहा हूँ, तब तक तुम तैयारी करके रखो, ठीक। और चले गए, जल में खड़े रह गए और उनको याद ही नहीं रहा, जान पूछ करके समय बिता दिया। अब केवल एक मिनट का समय रह गया, यदि उसमें कुछ ठाकुर जी का प्रसाद नहीं ले लेते हैं तो व्रत नष्ट हो जाएगा। एकादशी करने का जो फल है भगवान के चरणों में प्रेम, ये नहीं होगा। क्या किया जाए? देखा जो तो ऋषि आई नहीं रहे और एक मिनट के अंदर में तो आएंगे नहीं, अब क्या करना चाहिए? तो वहां पर बड़े बड़े शास्त्र जानने वाले बड़े बड़े ब्राह्मण लोग भक्त लोग सब वहां पर थे, उन लोगों से पूछा क्या किया जाए। उन्होंने कहा भाई अतिथि तो साधारण आदमी नहीं है, बहुत बड़ा ऊंचा अतिथि है, यदि आप उसके आने के निमंत्रण दे करके और पहले ही कुछ खा लेते हैं तो आपको श्राप अभिसंपात दे देगा, कॉर्स कर देगा और आप मरे जाएंगे, आपके घर वाले सभी मरेंगे। और यदि एकादशी का पारण नहीं करते हैं समय पर तो आपको व्रत का नष्ट समय वो जो फल है वो नष्ट होगा। उन्होंने कहा जो कुछ भी हो मैं अपना परमार्थ नष्ट नहीं करना चाहता, भले ही मर जाना पसंद कर है मुझे, किंतु एकादशी का फल जो भगवान की भक्ति है वो नष्ट नहीं होनी चाहिए। हम तो भगवान के चरणों में प्रेम चाहते हैं, उनकी सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम एकादशी का पारण जरूर हमको करना है किसी भी हालत में। जो आदमी पूर्ण उपवास होता है, यदि पानी भी नहीं लेता है तो ठाकुर जी का चरणामृत जिसमें तुलसी दी जाती है उस चरणामृत को बिना तुलसी के भी चरणामृत यदि ले लिया जाए तो उसका पारण हो जाता है। किंतु जो लोग फल मूल खाते हैं और पानी और शरबत पीते हैं उन लोगों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए अन्न जाति या कुछ भगवान का प्रसाद जरूर लेना होगा। आ रहा है समझ में? जैसे हमने निर्जला किया, एकदम निर्जला, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पारण कैसे होगा? ले सकते हैं। किंतु यदि हमने कुछ फल लिया है, शरबत लिया है, दूध दही लिया है, तो हम पानी पीने से भी चरणामृत जो है हमारा पारण हो सकता है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ठाकुर जी का चरणामृत जो अन्न भी नहीं है और हमने निर्जला किया है इसलिए हम ठाकुर जी का चरणामृत हम ले लेते हैं। बस उन्होंने चरणामृत एक बूंद लिया, बस व्रत की रक्षा की थी, हमारी एकादशी का फल प्रेम नष्ट न हो। और उनके लेते ही जोगी महाराज जी दुर्वासा जी पहुंचे। अरे बदमाश, धर्म का ढकोसला, वो क्या कहते हैं, धर्म ढोंगी, ढोंगी तो व्रत करता है, ब्राह्मणों को निमंत्रण करके हमारे जैसे योगी को तुम नहीं जानता है जो क्या फल होता है, तुमने खा लिया? वो हाथ जोड़ करके खड़े थे, कुछ हाँ नहीं बोल रहे थे। तू बोलता भी नहीं है, इसके लिए क्षमा भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं तुमने किया, जाओ बस अपना एक केस का वो जटा थी ऐसे उखाड़ा और उखाड़ते भयंकर आग हो गई और उन्होंने उनके तरफ में छोड़ दिया। वो राक्षसी एकदम ज्वलंत अंगार बन गई और उनके तरफ में दौड़ी उनको जला देने के लिए, और वो चुपचाप खड़े हैं प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे। उनको मरने का फिक्र नहीं और रहने का भी चिंता नहीं, क्यों? वो भगवत भक्त हैं, वो जानते हैं कि आत्मा मर नहीं सकती है आग से या किसी चीज से, और आज न कल तो जाना ही है, तो इसके लिए क्या बात है, हमने अपना कर्तव्य पूरा किया है, हम भगवान के लिए किया था। मैंने कहा जो तुम हमारी अवज्ञा की हमको बुला करके और तुम पहले ही खा लिया। जब राक्षसी उनके तरफ में दौड़ी, इतने में भगवान का चक्र सुदर्शन भक्तों की रक्षा के लिए घूमता रहा, आकर के पहले कृत्या राक्षसी को जला करके खत्म कर दिया और वो मुड़ करके दुर्वासा की तरफ में चला। अब दुर्वासा जी, अब देखिए कितने बड़े योगी, आत्मा को जानने वाले हैं, आत्मयोगी हैं, और उस चक्र सुदर्शन के डर के मारे भागे और ये इसने पीछा किया। त्रिलोकी में कहीं भी स्थान नहीं, जहां जहां जाए पीछे पीछे लगा रहा, अब मरे, अब छुआ, अब जलाया, अब जलाया, किंतु जला नहीं रहे थे, उस कारण था। त्रिलोकी घूमाए, ब्रह्मा के पास में गए, शंकर जी के पास में गए, कहा जी हम नहीं कुछ कर सकते, ये तो प्रभु का चक्र सुदर्शन है, यदि हम कहेंगे तो हमको भी मारेगा, ये हमको भी जला करके खत्म कर देगा, जाओ भैया जिसका चक्र सुदर्शन है उसी के पास में जाओ, नारायण के पास में, विष्णु के पास में गए, भगवान के पास में। भगवान से प्रभु आपका सुदर्शन चक्र पीछा करता हुआ आ रहा है, आप जल्दी से हमें बचाइए, इनको मरने का भय है। किंतु उस भक्त को, उसको कोई भय नहीं। भक्त ऐसे ही होते हैं, उनका किसी को भय नहीं, निर्भय होकर के भजन करते हैं, भगवान के चरणों में शरणागत हैं, इसलिए मृत्यु आए चाहे जो कुछ भी हो वो नहीं डरते। और दुर्वासा जी इतने सिद्ध योगी, मृत्यु के पीछे भगे 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 किसी प्रकार से। नारायण बोले जी मैं कुछ नहीं करता, यदि किसी के पैर में कांटा गड़ गया तो वो सिर से नहीं निकलता, आ रहा है समझ में? पैर में कांटा गिरा गड़ गया ऐसे तो कहां से निकलेगा? पैर से ही निकलेगा। हमारा पैर है, हमारा भक्त है, हमारा हृदय है, तो जहां गड़ा है वहीं से निकलेगा। तुम जाओ फिर उन्हीं के पास में, अम्बरीश के पास में जाओ, वही कुछ कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो अपने को बेच दिया है भक्तों के हाथ में, मैं कुछ स्वतंत्र तो थोड़े हूं। हम तो भक्त के पराधीन हैं, वो जैसे नाचाता है मैं वैसे नाचता हूं। अर्जुन ने कहा जा रथ पर बैठ जाओ, तो मैं उनके रथ पर बैठ गया। कोई कहा जा हमारे हृदय में बैठ जाइए, तो मैं बैठ गया। बिना उनके आदेश से मैं कुछ नहीं करता, मैं जो कुछ करता हूं भक्तों के लिए ही करता हूं। मैंने अपने को बेच दिया, भाई जाओ वहीं। फिर कुछ नहीं आया समझ में, फिर लौट करके गए। जब उनके चरणों में गिरना लौटे तब उन्होंने पकड़ लिया आलिंगन करके, महात्मा जी आपको बहुत मैंने कष्ट दिया, आप मुझे क्षमा करें। अरे तुम, तुम्हारी महिमा आज हमने देखी, भगवत भक्तों की महिमा, भगवान के दासों की महिमा अद्भुत है। मैं पहले नहीं जानता था कि भक्तों की महिमा इतनी है। मैं समझता मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, मैं सिद्ध योगी हूं, मैं विश्व में सर्वत्र भ्रमण कर सकता हूं मन के वेग से भी यदि, किंतु आपकी इतनी महिमा आज नारायण के मुख से हमने सुनी, शंकर जी के मुख से और ब्रह्मा जी के मुख से सुनी। उसको त्रिलोकी में कोई भी दंड देने वाला नहीं है, भगवान के प्रभु को। एक बार भगवान का नाम यदि ले लिया कोई भूल से भी, जमदूत उसके पास नहीं आएगा, उसकी सारी व्यवस्था प्रभु के अंदर में होती है, उसके लिए बैकुंठ से विमान आते हैं। यदि एक बार भगवान का नाम लेकर के प्रणाम कर दिया, सिर झुका दिया, खबरदार जम के दूत वहां मत जाना। भूल करके भी अपना नाम यदि भगवान का कोई भी नाम, हजारों नाम में से कोई भी एक नाम ले ले, तो भी उनके पास में नहीं जाना। जिनके गले में तुलसी देखना, जिनके घर में ठाकुर जी गीता भागवत हो, उनके घर में तुम लोग मत जाना। ये तुम लोग के कंट्रोल में नहीं है, जम के कंट्रोल में नहीं है, ये किसके कंट्रोल में है? प्रभु के हाथ में है, वो जैसा करते हैं करें। इसलिए आज मैंने उनकी महिमा देखी, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। मैं देखिए आपके लिए एक वर्ष तक उपवास होकर के ऐसे ही खड़ा हूं, मैंने कुछ नहीं लिया। कहा जी एकादशी की महिमा इतनी है, मैं नहीं पहले समझता था, मैं एकादशी नहीं करता था, अब आज से मैं भी एकादशी करूंगा। हमको भी कितना हो गया, कितना वर्ष, एक वर्ष पूरा हो गया, कुछ खाए हुए मैं घूम रहा हूं, हमारी कितनी 12 एकादशी हो गई, आज मैं उसका पारण कर रहा हूं, 24 एकादशी। तुम्हारे घर में जो कुछ बना है भाई लाओ, अब मैं निर्जला किया। उनके घर में जो कुछ ठाकुर जी का प्रसाद बना हुआ था, उन्होंने कहा जी पहले आप लीजिए, आपका प्रसाद लूंगा। अम्बरीश ने कहा जी नहीं 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 नहीं, आप ब्राह्मण हैं, पहले आपको दूंगा। बड़े नम्र होते हैं संत लोग। अम्बरीश महाराज होने पर भी इस संत से और जोगी से भी बड़े लाख गुना ऊंचे हैं। कोई गृहस्थ भक्त भी हो, एकादशी का व्रत करता है, भगवान का नाम करता है, ठाकुर जी की पूजा करता है, बेईमानी नहीं करता, चोरी नहीं करता, वो परमात्मा है। साधारण लोग इस चीज को नहीं समझते। कोई भी साधु ब्राह्मण उसको प्रणाम तो करेंगे, किंतु उसका भी प्रणाम में वो है, कृष्ण की मैया यशोदा जी है ना। यदि वहां पर कोई भी ब्राह्मण पहुंच जाएगा तो अपने तो प्रणाम करके उसकी धूली लेकर के अपने लगाएंगे, कृष्ण को भी लगाएंगे, कहा जी हमारा लाला कृष्ण, इसकी विपत्ति न हो, मतलब पर ब्रह्म साक्षात जिसकी गोदी में आए हैं, और उनकी चरण की धूलि देते हैं और वो आशीर्वाद करेगा तुम्हारा लाला ठीक रहे, कुशल से रहे। बतलाओ, इसलिए भक्तों की महिमा लोग नहीं समझते। एकादशी की बड़ी महिमा है। एक छोटा सा और सुन लीजिए, पुराणों में एक समय की बात है, एक राजा थे, उनका नाम था चित्रांगद और उनके बेटे का नाम रुक्मांगद और उनका नाम था धर्मांगद। ये कहानियां नहीं है, माइथोलॉजी नहीं है, ये प्रत्यक्ष सत्य है। यदि मैक्स मुलर की कथाएं जो उन्होंने लिखा वो यदि ठीक है, मान्य हमारे लिए है, यदि साइंटिस्टों की जो थ्योरिया जो पुस्तकों में है वो ठीक है, हमारे पुराण उनसे लाखों वर्षों की कोटि कोटि वर्षों के सत्य इतिहास हैं। माइथोलॉजी मत समझना, ये गप केवल है, ऐसे ही है, लोगों के समझ में नहीं आता इसलिए वैसे कहते हैं। हमारे भारतवर्ष को नीचा दिखलाने के लिए ये सब कल्पनाएं कोरी की गई। ये हमारे लोग कहेंगे संस्कृत इज डेड लैंग्वेज, उसमें कुछ भी नहीं है। अरे उसी को लेकर के आज जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका सब बड़े बड़े रिसर्च करके ये विमान और क्या क्या निकाल रहे हैं। इसलिए माइथोलॉजी नहीं है, कल्पनाएं नहीं है कोरी। जवाहरलाल ने भी अपनी इंदिरा गांधी बेटी को लिखा मसूरी में, ये सब बेकार की बातें हैं, पुराणों की बातें विश्वास नहीं करनी चाहिए। एक आदमी ने पूछा जी गीता पढ़े हैं? तो हाँ, गीता में बतलाइए ये क्या है। मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने सुना है। कहिए आप हिंदुस्तान के होते हुए भी वहाँ के प्रधानमंत्री होकर के आपने गीता नहीं देखा तो आपको धिक्कार है, एक अंग्रेज वहाँ जर्मन विद्वान ने कहा। तो हम लोगों को ये सब जानना चाहिए, आप लोग को, इसलिए आप मैंने विशेष करके आप लोगों को बुलाया। अपनी भारतीय संस्कृति को मत भूलिए, चाहे स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो, अपने बच्चों को भी ऐसी कोई व्यवस्था आप लोग बनाएं जो हमारी उच्च, जो विश्व भर में जो उच्च संस्कृति है, जिसमें आत्मविज्ञान है, परमात्मा विज्ञान है, प्रेम का विज्ञान है, है ना, ढाई अक्षर प्रेम का, जिसके अंदर में प्रेम नहीं है और समस्त सब कुछ जानता है, बड़े बड़े एटम बम बना सकता है और प्रेम नहीं है तो वो ये ज्ञान किस काम का, संसार को भ्रष्ट कर देगा, जला करके खत्म कर देगा। प्रेम जरूर होना चाहिए, यही प्रेम की विद्या हमारे भारतवर्ष में है, इसको समझिए। तो इसलिए धर्मांगद और रुक्मांगद, धर्मांगद पिता का नाम राजा और उनके बेटे का नाम चित्रांगद रुक्मांगद। राजा ने ऐलान किया कि देखो हमारे राज्य भर में सभी लोग एकादशी का व्रत करेंगे, अन्न नहीं खाए, यदि किसी ने भूल से खा लिया तो हमारे आदमी चारों तरफ में हैं, वो खबर लगा करके मुझे बतलाएंगे, अपने देश से निकाल देंगे उनको, फांसी मैं नहीं देता, किंतु अपने देश में नहीं रहने दूंगा। कोई भी अधार्मिक व्यक्ति को, चाहे स्त्री पुरुष बाल वृद्ध कोई हो, अपने देश में हमारा कोई स्थान नहीं है। धार्मिक व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास करते हैं, सच बोलते हैं, माता पिता का आदर करते हैं, पति पत्नी में प्रेम से रहते हैं, स्वार्थ नहीं है, ऐसे लोग हमारे राज्य में रहें। और भगवान पर जिनका विश्वास नहीं है, एकादशी नहीं कर सकते, माता पिता का आदर नहीं करेंगे, गुरुजनों का आदर नहीं करेंगे, हमारे राज्य को छोड़ करके दूसरे में चले जाएं। इसलिए एकादशी के पहले दिन उनके राज्य भर में ढिढोरा बजता था। ढिढोरा माने क्या? दुगदुगी बजा करके कहते थे जी कल एकादशी है, सावधान हो जाओ, सावधान, कल एकादशी है। इस प्रकार से सब कुछ चैतन्य करा दिया जाता था। राजा अब बूढ़ा हो गया, 50 वर्ष का, उसने अपने बेटे को राज्य पद दे दिया। 50 वर्ष के बाद में अब गृहस्थी नहीं करनी है, अब बहुत काम किया 50 वर्ष, बच्चे हो गए हैं और घर में हमारा पूरा सब कुछ है, अब बेटे मालिक होकर करें। यदि 50 वर्ष 60 वर्ष के बाद में भी रिटायर्ड होने के बाद में घर में रहते हैं और मालिक बन करके रहते हैं या मालकिनी, तो बहू से झगड़ा होगा, बेटे से झगड़ा जरूर होगा, और अब बच्चे आपको जरूर तंग करेंगे, इसलिए खुशी से उनको सब दे दीजिए। आप लोग 50 वर्ष के हो जाने के बाद में ये चाबी अपने घर की है, अपनी बहू को दे देना। और ये बाप लोग क्या करेंगे अपने बेटे को, जबकि वो 24-25 वर्ष का हो जाता है और आप हो जाते हैं 60 वर्ष का, भाई खुशी से उसको दे दीजिए, तब तो आपका आदर होता रहेगा घर में, और नहीं तो आदर नहीं होगा, ये समझ रखिए, वो घर बेकार का हो जाएगा।
अरे पहले मांगे तो
हाँ, आज करके कल जुगी लड़के मांग लेंगे, और भारतीय लड़के वो कभी भी नहीं मांगेंगे, किंतु बेटा उनको दे देता है। तो वो 50 वर्ष होने के बाद उन्होंने कहा कि बेटा आप तुम राज्य करो और मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ भजन करने के लिए, कोई जरूरत हो तो तुम हमसे आकर के कहना, हम तुमको बतला देंगे। ये कह करके वो चले गए भगवान का भजन करने, और घर में सब सारी चीज़ें, और बेटा करता था, किंतु बेटा कहता था कि जब तक हमारे पिताजी ये तो हैं राजा वही हैं, मैं युवराज हूँ, केवल युवराज मैंने उनका काम देखना, ऑफिस संभालना, केवल मालिक हमारे पिताजी हैं। चले गए, एक दो वर्ष या 4-5 वर्षों के बाद में जब वो राजा वन में जो भजन कर रहे थे, चित्रांगद क्या धर्मांगद, एक बड़ी रूपसी 16 वर्ष की परम सुंदरी एक कोई राजकुमारी से उनके सामने आई, और जहाँ ये भजन कर रहे थे उसी के सामने में फूलों को लेकर के इस प्रकार से करती हुई, कभी उसके कपड़े इधर से उधर हो जाते और उनके सामने खेल रही थी। अपूर्व सुंदरी है, तो मैंने प्रवेशी सुंदरी देखा। ये थी कौन? ये थी जमराज जी। कह रहे हैं कि भाई आज कल एकादशी का व्रत करके सभी लोग तो पार हो जाते हैं, हमारे यहाँ कोई आता ही नहीं है, जेलखाना पूरा खाली हो गया, नर खाली हो गया, तो अब इसकी क्या जरूरत है, इसलिए प्रभु आप हमारा ये सब कुछ जो दायित्व था नौकरी आप ले लीजिए, और मैं भी जंगल में जाकर के भजन करूंगा एकादशी व्रत करके। मैंने कहा भाई ठहरो तो थोड़ा सा, अभी थोड़े दिन तक रखो ऐसे ही, फिर जरूरत होगी तो मैं देखूंगा। ब्रह्मा जी को कहा जी देखो एक मोहिनी नाम की ऐसी सुंदरी लड़की बनाओ जिसको देख करके उसकी खूबसूरती को सभी लोग भूल जाए, और उसको कहो जो वो राजा जो वन में जंगल में गया है वो एकादशी व्रत तोड़ दे, और अपने बेटे को भी कह दीजिए एकादशी व्रत तोड़ दे, तो फिर नरक में आदमी फिर काफी गुलजार हो जाएगा, चहल पहल हो जाएगी। अब वो ब्रह्मा जी ने परीक्षा के लिए राजा की, उन्होंने मन ही मन में एक सोचा, एक अपूर्व सुंदरी 16 वर्ष की कन्या सर्वांग सुंदर हो जाए, साथ ही साथ में हो गई, जो विश्व की सृष्टि करते हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा मैं क्या करूं, मुझे किस लिए बनाया, देखो तुम्हारा नाम हम बेटी मोहिनी रखते हैं, तुम्हारा ऐसा सुंदर रूप बनाया कि जगत का कोई भी आदमी देख करके मुग्ध हो जाएगा, भूल जाएगा अपने को। तो महाराज का वो धर्मांगद जो वन में तपस्या कर रहे हैं उनके यहाँ जाना, उनको देख करके तुम उनके पास में चली जाना, और तुम्हें देख करके कहेंगे मैं तुम्हारे साथ में विवाह करके रहना चाहता हूँ, तुम स्वीकार करना, किंतु कहना जो मेरी बात मानेंगे आप तो करूंगा, नहीं यदि मेरी बात को नहीं मानेंगे तो मैं चली जाऊंगी। इसके बाद में तुम उनकी परीक्षा लेना एकादशी के दिन, एकादशी मत उनको करने देना। बहुत ठीक, ब्रह्मा के आदेश से वो उनके पास में गई, बड़ी सुंदरी सजी हुई, केश में फूल के गुच्छे लगा रखे हैं, लंबा काजल, सुंदर तिलक, अद्भुत, और अपने कपड़ों को आधा रखा, पूरा नहीं, जैसे यहाँ के देखते हैं ना, कोई चादर फादर कुछ नहीं, और यहाँ तक पूरा खुला, यदि यहाँ तक खुला रहा तो कोई बात नहीं, सड़कों पर बड़े मोर से चलते हैं। तो वैसे करते हुए वो उनके समीप में चली गई, उनका ध्यान खुल गया, जो वो कुछ स्मरण कर रहे थे, देखा देखकर के कहा भाई कौन है, अब उनसे रहा नहीं गया तो उसको बुलाया, तो वो आ गई, आप कौन हैं, किसकी राजकुमारी हैं, किसकी बेटी हैं, किस लिए यहाँ पर आई? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इधर से जा रही थी किसी काम से, किंतु आपको देखा जी, आपके समान जगत में कोई सुंदर नहीं है, मैं आपके साथ में विवाह करना चाहती हूँ। देखा जी, मुंह मांगे ये मिल रहा है वरदान। मैं ये ठीक है, मैं भी अब तो आया था भजन करने के लिए, तो मैं भजन पीछे कर लूंगा। ठीक है, वहीं पर गांधर्व विभाग हो गया। राजा ने कहा, अब जब विवाह हो गया तब राज्य सुख भोगेंगे, यहाँ पर तुमको मैं खुश नहीं कर सकता, तो चलो हमारे साथ में। उसको लेकर के आ रहे थे और खबर दिया अपने बेटे को, जब बेटा मैं आ रहा हूँ और हमारे साथ में हमारी नई दुल्हन भी है। अच्छा ठीक है राज, उसने सुना, वो हाथी घोड़े और रथ लेकर के और अपनी मैया को भी बुलाया, देखो मैया एक बात करना, राजा आप दूसरी लड़की से शादी करना चाहता है, उस लड़की को तुम अपना बड़ी बहन के समान जानना और मैं उसको अपनी मैया के समान समझूंगा, इसमें तनिक भी गलती नहीं होनी चाहिए, और उसकी सब प्रकार से सेवा करना, राजा को खुश रखना है, राजा हमारा पिता है, तुम्हारा पति है। इसलिए जब गया तो बड़े ढाक ढोल से बड़े जुलूस के साथ में उसको हाथी पर लेकर के बैठा करके राजा रानी को बड़े प्रेम से नगर में लाया और जो राज्य का काम था सब राजा को समझा। राजा बड़े खुश हुए, हमारा बेटा तो बड़ा अच्छा है, और उनकी पत्नी भी दासी की भांति उनके पास में रही। इतने में रहते रहे, अब राजा मालिक होकर के अब उसके साथ में राजभवन में रहने लग गया। एकादशी का पहला दिन आया, राजा ने ढिढोरा पिटवाया, कल एकादशी है, सावधान, सबको एकादशी करना है। जब वो बज रही थी और जबकि आदमी वो कह रहा था प्रतिहारी,